Intelligent choice, locations, sound system, innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye. 437-218-8734. ChandniHalls.ca.
यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours, 905-272-2300, airwings.ca.
एक खबर से खुश आमदीद कहना चाहती हूं और टॉप ऑफ द आवर आपने अभी समाप्त फरमाए। बताना चाहते हैं कि शाह कंसल्टेंट जनाब नासिर शाह साहब ने 25 तारीख का जो G20 का मैच है उसको लॉक किया है। कैसे? उन्होंने कहा है कि मैं एंड यूजर जो हैं, जो क्रिकेट के शायकीन यहां, और आपको बताइए कि क्रिकेट अब नॉर्थ अमेरिका में कितना जोर पकड़ती चली जा रही है, और अपने बच्चों को लेके आए ताकि उनमें भी इंटरेस्ट डेवलप करना। वैसे तो मेरा ख्याल है जितने भी साउथ एशियंस हैं, इंग्लैंड से जो लोग हैं, अफ्रीका से जो लोग हैं, उनकी नसों में क्रिकेट दौड़ती है। उन्होंने सहूलत क्या पैदा की है? मेरा ख्याल है इसमें तो स्टूडेंट्स कैन अवेल इट। $5 की टिकट हैं, $15 की हैं, $25 की हैं, बाय टू टिकट्स गेट थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री। मैं फ्री का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगी बिकॉज देयर इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड। Nobody needs something for free. It's complimentary. They buy two tickets, get third complimentary. चाहे $15 की हो, चाहे $25 की tickets हो, तो जाहिर है it's a great help. नासिर शाह साहब ने 1000 tickets जो हैं वो यहां पे अपने लिए खुद ले ली या अपने लिए मुख्तस करवा ली कि हर बंदा जो दो टिकटें खरीदे तीसरी टिकट मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दी जाए। 25 तारीख, दिस डील इज ओनली फॉर 25th of July के लिए डील है। ये मैच CAA सेंटर में है, वर्ल्ड रिनाउंड प्लेयर्स इस मैच में आ रहे हैं, तो आप शाह कंसल्टेंट से राबता कर लीजिएगा। मुझे तो सिर्फ इतना ही याद है, 712-7000, एरिया कोड 647, वकास शाह को आप कॉल कर सकते हैं शाह कंसल्टेंट से। मैं मर जावा। टोरंटो वेदर, स्टॉर्म शावर्स एक्सपेक्टेड मिडवीक। आपको पता है पिछला तूफान है, माय गॉड, इतना बुरे हालात छोड़ के गया, इतने बार लोगों की घरों की बेसमेंट्स में पानी आ गया, और बहुत से लोगों ने जिन्होंने अपनी पॉलिसीज नहीं पड़ी हुई थी, इंश्योरेंस ने पे करने से इनकार किया क्योंकि ये बैकअप वाटर बैकअप जो सुअर बैकअप है, बाहर से पानी जो अंदर आया है, दैट इज नॉट कवर्ड। बट ऑफकोर्स बहुत से लोगों ने जिन्होंने पढ़ के अपनी पॉलिसीज नहीं है उनको इसके बारे में ज्यादा मालूम होगा। मगर साहब आज मंडे है और इस वीक के मिड में भी तूफान भी होगा, बारिशें भी होंगी, और बस फिर देखिए क्या होगा। आइए एक मुलाकात की तरफ लेके बढ़ती हूं, मगर मुलाकात से पहले दो स्पॉन्सर्स का मैं और जिक्र करना चाहती हूं। डॉक्टर फयाज कुरैशी फैमिली डेंटिस्ट हैं, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री अगर आप करवाना चाहते हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इम्प्लांट्स हैं, उसके लिए आप उनसे राबता कीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फयाज कुरैशी के 3 क्लिनिक्स हैं, 2 क्लिनिक उनके मिसिसागा में है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट एवरी क्लिनिक इज, उन्होंने स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन इट। 1 ऑफिस इन द ईस्ट एंड इन स्कारब्रो, 2 ऑफिस हमारे मिसिसागा में हैं। डॉक्टर फयाज कुरैशी से आप राबता कीजिएगा। डॉक्टर फयाज कुरैशी का नंबर 9052325678। एक गाना था, एक डाल पे तोता बोले, एक डाल पे मैना, याद है आपको? और मैना बहुत खूबसूरत बोलती है, मैना तो गाने भी गाती है। अभी बेचारे जो सारम बरनी है, आप बताए खून के रिश्ते, एक माँ की कोख से बच्चे पैदा होते हैं, एक घर में पलते हैं प्यार मोहब्बत में, मगर पैसा इतनी बुरी चीज है दोनों भाइयों के दरमियान। ही वर्क फॉर हिज ब्रदर्स चैरिटी, और फिर जब इन्होंने इंडिपेंडेंट अपनी वो चैरिटी शुरू की, और फिर आप देखिए कि पैसे के लिहाज से कितनी एनिमोसिटीज हो जाती हैं। रिसेंटली सारम बर्नी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने कहा कि अमेरिकन काउंसलर ने लेटर लिखा कि वो बच्चों को स्मगल किया करते होते थे, और वो ये कहते थे ये तीन बच्चे हैं जिसमें बहुत से लोग अपने बच्चों को छोड़ जाया करते थे, अमेरिका में वो पेरेंट्स को दे देते थे अडॉप्शन के लिए, होता होगा आई डोंट नो, मगर जो भी खबर है कोई इतनी अच्छी खबर है नहीं। वो कहते हैं कि अमेरिकन काउंसलेट ने लेटर लिखा है ये कि इन्होंने एक साल में तकरीबन 18 बच्चों को पाकिस्तान से अमेरिका मुंतकिल किया था। बट आई थिंक होगा, इसमें भी सच्चाई होगी, किसी हद तक सच्चाई जरूर होगी, मगर ऑन द अदर साइड ये पर्सनल एनिमोसिटी जो होया करती है, जो पैसा है ना इतनी खौफनाक चीज है कि ये खून के रिश्तों में भी दरार डाल देते हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, हकीकत है ये। आइए साहब आपकी मुलाकात की तरफ लेकर के चलती हूँ, और मुलाकात में एक पैसा और एक इकतदार। मैं ऑटोमन्स की कभी कभी कहानी को देखती हूँ, या बहुत सारे बादशाहों की कहानियों को आप देखें, मंगोल्स की कहानियों को देख लें, ऑटोमन्स की कहानियों को देख लें, यानी एक बाप ने अपने बच्चों को मरवा दिया, दो दो चार चार शादियां कर लेते थे, एक माँ ने दूसरी माँ के बच्चे से ताकि बादशाह वहां ना जाए यहां पे आ जाए, ये मामला आम है। अगेन इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। लेडी डियाना का आपको याद ही होगा कि लेडी डियाना डोडी अल फयाद के साथ जब इनकी डाइवोर्स हो जाती है, डोडी अल फयाद के साथ जब इनका हो जाता है तो उन्होंने रिंग भी दे दी थी, आज भी इंग्लैंड के स्टोर में उन दोनों का मुजस्मा भी रखा हुआ है। एंड कहते हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी, शी वॉज एक्सपेक्टिंग मदर एंड शी वॉज प्रेगनेंट, ये जो उनका हादसा हुआ था, जो वाकया हुआ था, तो शी वॉज प्रेगनेंट। अब वहां पे इनको मारे जाने की चाल क्यों चली गई, क्योंकि बादशाह चार्ल्स कितना अरसा तक जिंदा रहेंगे, वो तो मलका ने बाद में डिसीजंस दिए, हालांकि कमेला से शादी होने के बाद चार्ल्स को तो बादशाह बन ही नहीं सकते थे बरतानवी कवानीन के मुताबिक, मगर उनके बड़े बेटे जो थे वो डेफिनेट बादशाह थे ही थे, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, ये काबिल कबूल नहीं था कि वक्त का बादशाह और उसका हाफ ब्रदर जो है वो एक मुसलमान उसका बाप हो। और डोडी अल फयाद जो थे उनके वालिद साहब, आपको पता ही है कि इंग्लैंड की सिटीजनशिप हासिल करना चाहते थे, एंड कहते हैं कि वो शी वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम जब उनकी डेथ हुई, और ये सबसे बड़ी थ्योरी है कि दे नेवर वांटेड के वक्त का जो बादशाह है उसका हाफ ब्रदर एक मुसलमान, और मुसलमान भी वो वाला हो जो इंग्लैंड की सिटीजनशिप लेना 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 करता रहा और उसी की फाइट लड़ रहा था। तो बादशाहत इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है इवन इस 21st सेंचुरी में भी। बात करी थी कि ऑटोमन्स का भी मैंने जो पढ़ा, चार चार बेटे मरवा दिए इन्होंने अपने। मेरे साथ इस प्रोग्राम को जीनत बख्शा करते होते हैं जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, आप उनको बहुत पसंद भी करते हैं। वी ट्राई टू चेंज लिटिल बिट हेयर एंड देयर कि हम ये प्रोग्राम ट्यूजडे को कर लें, मगर मेरा ख्याल है चीजें जहां बैठ जाया करती होती हैं फिर बस उनका वही मुकाम बन जाया करता होता है। और करामत भाई को हम ट्यूजडे को ले गए थे, और मंडे को हमारे साथ आशर अजीम, आशर अजीम बिल्कुल हमारे साथ ही है, चैनल का हिस्सा है, आशर अजीम विल बी ऑन ट्यूजडे, मगर आपको पता ही उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, और उनकी वालदा के इंतकाल के बाद कल उनका फ्यूनरल, परसों उनका फ्यूनरल था, सैटरडे को उनका फ्यूनरल था, तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव हिम अ स्पेस एट द मोमेंट। और जाहिर है जब माँ का रिश्ता हो, बेशक हम अपनी जिंदगी में मसरूफ हुआ करते होते हैं, मगर ये नाकाबले तदाफी नुकसान है, और माँ बाप भूले से भी भूले नहीं जाते। एनीवेज मंडे को करामतुल्लाह गौरी साहब भी हमारे साथ हुआ करेंगे। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम आरिफा। ये पीर का दिन, पीर का दिन तो तुम्हारे नाम से मंसूब हो,
मैं सिद्ध के चली जाऊं, बहुत शुक्रिया।
आज आज मेरे पास एक खातून का फोन आया, उनसे मेरी किसी पार्टी में मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि सर मैं तो पीर का इंतजार करती हूँ कि उस दिन आपका प्रोग्राम होता है, मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। और आरिफा जी भी आपसे जो सवालात करती हैं ना, तो वो आपको उकसाती हैं सही जवाब देने में और तफसील से जवाब देने में। तो मैंने कहा कि आरिफा तो जाहिर है कि वो तो एंकर है इस प्रोग्राम की, और सवाल करना और सवाल माकूल करना, मेरे मौला का, मौला अली का कौल है कि सवाल करो ताकि पहचाने जाओ। सवाल करना, सवाल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसा सवाल जो जो सामने वाले को कुरेदे, उसको उकसाए, उसको उसको तहरीक दिलाए कि वो उसका जवाब दे, ये बड़ी बात होती है। सवाल सवाल माकूल करना भी बड़े वश की बात है। तो मैंने उन खातून से जब बात खत्म हो गई तो मैं, वो चार मिसरे नाजिल हो गए मुझ पे, तो सुनो
जी।
फजले आरिफा हम पीर हो गए हैं हुजूर, फजले आरिफा हम पीर हो गए हैं हुजूर, बड़ा नशा है मुरीदी में और पीरी में। बड़ा नशा है मुरीदी में और पीरी में, और हमें है मर्ज पुराना कि सच कहेंगे सदा।
हमें है मर्ज पुराना
कि सच कहेंगे सदा, करामत हो नहीं सकती है जी हुजूरी में।
क्या बात है सर, बहुत।
और ये देखो आखिरी आखिरी मिसरे का आधा मेरी शरीके हयात और शरीके फन परवीन की देन है। मैंने कुछ और लिखा था।
अच्छा,
मैंने कुछ और लिखा था और उनका नहीं, इसको आप ये कर दीजिए कि करामत हो नहीं सकती है जी हुजूरी में। मैंने कहा था कि दिल हमारा नहीं लगता जी हुजूरी में,
करामत हो नहीं सकती,
करामत हो नहीं सकती है जी।
क्या कमाल है जी, क्या कमाल।
तो शायरा बीवी अगर हो तो वो फन के रास्ते पर भी रहनुमाई करती है।
कमाल है, कमाल है। मगर नहीं, उन्होंने जो बात की बड़ी बड़ा सही के करामत हो नहीं सकती जी हुजूरी में। करामत रुखारी साहब, मैं एक बात जरूर आप तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों को एतराज भी होता है कि मैं बोलती हूँ। अब ये रेडियो प्रोग्राम है, अगर मैं चुप कर जाऊंगी तो आप कहेंगे आरिफा तुम्हारा रेडियो बोलता नहीं है। क्या न जाय मानदंड न पाए रखना। और एक बात याद रखियेगा कि सवाल कोई भी बुरा नहीं हुआ करता होता। आप लोगों की तसल्ली और तशफी के लिए, डू नॉट बिलीव इन द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे इतनी फेक न्यूज है, इतनी फेक न्यूज है कि मैं क्या बताऊं आपको। हमारा मकसद यही है कि हम आपसे सच्ची चीजों, आज करामत गौरी साहब से जो मैं बात शुरू करूंगी, यहीं से शुरू करूंगी कि DJSPR ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तीन चार चीजें कहा जा रहा था, दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जाता था और कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी आम हो गई है। वाकई पाकिस्तान में दहशतगर्दी अगर आम हुई है तो आपके नॉर्दर्न, आपके वेस्टर्न बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं, आप अपनी फोर्सेस को वहां मुतय्यन करें, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। मगर दहशतगर्दी का बड़ा जिक्र सुना, फिर हमने सुना कि अजम इस्तेहकाम का प्रोग्राम शुरू हो किया जाएगा। अजम इस्तेहकाम का प्रोग्राम क्या है कि दहशतगर्दों को पकड़ेंगे हम और दहशतगर्दों को उड़ा दिया जाएगा, बेनामी अगवा हो जाएंगे। फिर हमने इसका जिक्र अभी हम सुन ही रहे थे तो हमने सुना कि अब आपकी कॉल्स भी ट्रैक हुआ करेंगी, आपकी तमाम की तमाम कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। साहब, अगर आपने अपने मुल्क के लोगों को ही दहशतगर्द करना है तो यू आर नॉट ऑन द राइट डायरेक्शन। आज DJSPR ने जब बात की, उमर अयूब साहब ने बल्कि इसको कहा है कि अगर सवाल करना गलत है तो फिर आपके सहाफी भी नहीं सवाल कर सकते। अगर हम सवाल करना और हर सतह के ऊपर, अगर बीइंग अ पेरेंट्स भी अगर आप अपने बच्चों को उनकी उनकी जो इंक्वायरीज हैं उनको एड्रेस नहीं करते तो थिंग्स गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। करामत गौरी साहब जिक्र करेंगे आज DJSPR ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके हवाले से। सर, क्या देखा आपने?
आरिफा, मुकम्मल फस्ताइयत का दौर दौरा है पाकिस्तान में, अफसोस होता है। देखो, हम एक ऐसे जमहूरी मुल्क में रहते हैं जहां जमहूरियत की पासदारी होती है, जहां जमहूरियत की بنیادی اقدار کا احترام کیا جاتا ہے. اور جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے اکثریت کا راج. وہ جو زبان خلق و نقارۂ خدا سمجھو کی کہاوت ہے, تو زبان خلق جمہور کے لہجے میں بولتی ہے, گفتگو کرتی ہے. اب پاکستان میں ہوا کیا ہے؟ ایک تو یہ دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ مین میڈیا پر, تمام ٹی وی چینلز پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو لائیو دکھایا جائے. اور انہوں نے طویل پریس کانفرنس کی ہے, اور آج جو باتیں انہوں نے کی ہیں تو مجھے تو پھر وہ دور یاد آتا ہے 1970 اور 1971 کا, جب بھی تو یہی تھا نا کہ ملک کی اکثریتی آبادی نے ایک سیاسی جماعت کے حق میں ووٹ دیا تھا, لیکن اس وقت جو حکمرانی کر رہے تھے ملک پر ان کو یہ بات پسند نہیں تھی. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بنگالی ملک پر حکومت کرے, لہذا اس عوامی فیصلے کو رد کر دیا گیا اور اس پر طاقت کے ذریعے سے ایک حل ٹھونسنے کی, مسلط کرنے کی کوشش کی گئی. ہماری تاریخ گواہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا, قائد اعظم کا پاکستان دو لخت ہو گیا. میں کل پرسوں کی محرم کے حوالے سے ایک پروگرام کر رہا تھا, اور میں نے کہا کہ ایک مماثلت ہے ہماری اسلامی تاریخ میں اور ہماری پاکستان کی تاریخ میں. مماثلت کیا ہے؟ سانحہ کربلا 60 ہجری کے اختتام پر ہوا. 61 ہجری کا آغاز ہوا تھا نا, ہمارا ہجری سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. 61 ہجری کا آغاز ہوا تھا. رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئے کتنے سال ہوئے تھے؟ 50 سال. 50 سال کے اندر امت مسلمہ اتنی انتشار کا شکار ہو چکی تھی کہ رسول کے خاندان کو کاٹ کے پھینک دیا. یہی حشر ہم نے قائد کے پاکستان کے ساتھ کیا. 1947 میں پاکستان بنا ہے, اور بنگلہ دیش کا سانحہ کب ہوا؟ 1970-71 میں. یعنی 24 برس میں, قائد کی آنکھ بند ہونے کے 24 برس کے اندر ہم نے ان کے پاکستان کو دو لخت کر دیا, ٹکڑے کر دیا. اور یہ اس تقسیم کا ذمہ دار کون تھا؟ وہی لوگ جو اپنے آپ کو پاکستان کی سرحدوں کا محافظ کہتے ہیں. نہ صرف سرحدوں کا محافظ کہتے ہیں, بلکہ اب تو وہ نظریہ پاکستان کے محافظ بھی بن بیٹھے ہیں. مجھے یاد آتا ہے عرفہ کہ پرویز مشرف نے جب 1999 میں نواز شریف کا تختہ الٹا تھا, تو اس کے 10 دن کے بعد وہ انقرہ تشریف لے گئے تھے. میں اس وقت وہاں ترکی میں سفیر تھا. وہ ترکی گئے تھے شاید اس خوش خیالی میں کہ چونکہ انہوں نے اپنے لڑکپن کے 7 برس انقرہ میں گزارے تھے, ان کے والد صاحب ہماری سفارت خانے میں اکاؤنٹنٹ تھے, مشرف حسین صاحب. تو پرویز مشرف نے اپنے 7 سال وہاں گزارے تھے, ترکی زبان بھی بول لیتے تھے تھوڑی بہت. وہ اس خیال سے گئے تھے کہ ترک رہنما ان کے بہت پیٹھ ٹھوکیں گے اور کہ تم نے شاباش, بہت اچھا کام کیا ہے. سلیمان دیمیرل جو اس وقت ترکی کے صدر تھے, ان سے جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں پرویز مشرف صاحب تھے, میں تھا, اور ہمارا سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد. تم
بہت پیارے انسان,
بہت پیارے انسان ہیں. تم ان سے اکثر انٹرویو کرتی رہی ہو.
جی جی.
تو وہ تھے, اور وہاں سلیمان دیمیرل نے کہا کہ جنرل, مجھے سیاست میں 50 برس ہو چکے ہیں, تو میں تمہیں بڑے بھائی کے طور پہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ خناس اپنے دل سے اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہمارے جرنیلوں کے ذہنوں میں بھی یہ خناس تھا, لیکن ہر بار جب آئے اقتدار میں, جب ملک پہ قبضہ کیا, تو جب گئے تو اور تنزلی کی طرف ملک کو لے کے چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو یہ ہمارے ترکی تو خوش نصیب ہے کہ اس کو اردوان جیسا رہنما مل گیا کہ اس نے جرنیلوں کو ان کی اوقات دکھا دی, ان کو ان کی بیرکوں میں واپس بھیج دیا. لیکن پاکستان کے ساتھ یہ ہوا, پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا سانحہ جو میں کہتا ہوں میری دانست میں, وہ یہ ہوا کہ پاکستان بننے کے ایک سال کے بعد تو پاکستان کے بانی چلے گئے, اللہ نے ان کو اٹھا لیا, تبھی موت ان کو نصیب ہوئی, ورنہ اس قوم کا جو کردار رہا ہے تو کیا پتا کہ قائد اعظم کو بھی قتل کروا دیتے, ہلاک کروا دیتے. اس کے
Still you never know.
ہاں
آج بھی جو صورتحال ہے,
قائد اعظم کے انتقال کے 3 برس بعد ان کے دست راست پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو سازش کر کے قتل کروا دیا گیا. اور اس کے بعد
ہم یہاں سے نا میرا خیال ہے آج
ایک بات سن لو,
پرانی بات کو چھوڑ
ایک
کے
بات سن لو, ایک بات جو میں
سنیں تو زیادہ بہتر
لانا چاہ رہا ہوں جس طرف, وہ یہ کہ وہاں سے آغاز ہوا اس گٹھ جوڑ کا جس کو میں جرنیل جاگیردار گٹھ جوڑ قرار دیتا ہوں.
بہت شکریہ. مگر لیاقت علی خان صاحب, کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایوب خان کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا واٹ واز دیٹ کہ لیاقت علی خان صاحب ان کو اس پوزیشن پہ لے آئے تھے اور قائد اعظم کے سامنے پیش ہوتے ہیں جس پہ قائد اعظم ایوب خان کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے؟
ایوب خان کو
لیاقت علی خان صاحب کیوں
مشرقی پاکستان میں تعینات کیا گیا؟
مگر کیا وجہ تھی کہ لیاقت علی خان صاحب نے فیور دی تھی ایوب خان کو؟
میرے خیال سے ان کو غلط مشورہ دیا گیا تھا.
دیکھیے اب جب ہم کسی چیز کو ایکسپریس کرتے ہیں تو ہم ہاف چیز شیئر کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لیاقت علی خان بھی کسی کے بہکاوے میں آ گئے تھے, ان کو غلط مشورہ دے دیا گیا تھا. ابھی آپ نے, اور سر جو آپ کی نالج ہے میری وہ نالج نہیں ہے, مگر میں نے بھی جتنا پڑھا ہے اس کے حوالے سے کہ مشرقی پاکستان میں یقیناً ہماری افواج, ہماری لیڈرشپ کی وہ غلطی کس کی تھی, تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یحییٰ خان, مگر دو پولیٹیشنز کی ایگو تھی. ٹھیک ہے, I might be wrong, but this is what I analyze. I respect your opinion, مگر politicians کی, ایک politician انہوں نے, بھٹو صاحب نے بھی اگر یہ لفظ کہا تھا ادھر ہم ادھر تم, وہ بھی کسی اور ریفرنس میں کہا گیا تھا جس کو پھر بعد میں اخباروں نے کور بھی کیا. مگر ابھی نریندر مودی صاحب انڈیا بنگلہ دیش جب جاتے ہیں, انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ اٹ واز پارٹ آف دا پلان کہ الٹیمیٹلی بنگلہ دیش کو ہم الگ کریں گے اور مکتی باہمی کا بھی ذکر ہے اس وقت بنگلہ دیش پہ جو پرابلم چل رہی ہے, کیونکہ حسینہ واجد صاحبہ نے اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو قائم کرتے ہوئے مکتی باہمی کا جو سپورٹر تھے ان کا کوٹا بڑھایا تھا,
ان کا 30% کوٹا.
ٹھیک ہے, دیکھیے سر
سرکاری
جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم میں اگر میں آرمی کی بات کرتی ہوں تو آئی ایم ناٹ اگینسٹ آرمی, مگر یس وہ میں کہتی ہوں باجوہ صاحب نے غدر کیا. میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ اگر اس وقت بھی پھر اٹھانا چڑھانا شروع ہو گیا, یعنی آپ کی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو اگلے دن آپ عمر ایوب کو بھی اٹھا لیتے ہیں, رؤف حسن کو بھی اٹھا لیتے ہیں, دس از رانگ.
کون,
وی آر گوئنگ, ہم کھائی کی طرف.
کون اٹھا رہا ہے؟
مگر سر کس کے ایمان پہ اٹھا رہے ہیں؟ ہمارا کوئی بھی پالیٹیشین, وائی دیز پالیٹیشین ناٹ گیٹ ٹوگیدر کہ وہ اس پارٹی کو نکالیں؟ آج آپ کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے جب پریس کانفرنس کیا تو لگتا ہے وزارت خزانہ بھی ان کے پاس ہے, ہر عہدہ ان کے پاس ہے
بھائی, پورا ملک.
ٹھیک ہے, تو آپ کے نہیں, اس میں آپ کا پالیٹیشین غلط رول پلے کر رہا ہے. ابھی آپ نے ایکسپٹ کیا کہ لیاقت علی خان صاحب کو غلط مشورہ دے دیا گیا تھا, ہی واز دست راست قائد اعظم کے, کس نے غلط مشورہ دیا تھا, انہوں نے کیوں غلط مشورہ مانا تھا, نمبر ون. نمبر ٹو, بنگلہ دیش کا اگر آپ واقعہ کہتے ہیں तो अभी नरेंद्र मोदी साहब ने, बल्कि बहुत से लोगों ने यह मशवरा दिया था कि नाउ पाकिस्तान शुड गो टू यूनाइटेड नेशंस, कन्फेस करके आए थे कि मुक्ति बाहिनी का रोल था। डू यू रिमेम्बर दैट? मेरे पास उस स्पीच का पार्ट भी होगा।
मुक्ति बाहिनी का रोल था, इससे किसको इनकार है?
ठीक है, हमारी अफवाज, हमारे पॉलिटिशियंस क्रुकेड रहे जिन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया जो पीछे बैठ के हुकूमत करने के आदि थे, वो हमारे जनरल्स थे। मगर उसमें पॉलिटिशियंस का भी इक्वल रोल है। आज पॉलिटिशियंस इकट्ठे होके उस तीसरी पार्टी को बीच में से निकालते क्यों नहीं?
अरफा, इसको इसके सही तारीखी पस मंजर में।
जी सर, आप
ठीक है,
मैंने आपको पहले नहीं काटा था।
नहीं, मैं बिल्कुल, तुमने दुरुस्त मुझको टोका और मुझे इस तरीके से मौका मिल गया कि मैं इस पूरे मसले को, इस पूरे मामले को इसके सियासी और तारीखी पस मंजर में रख के देख,
क्योंकि हर चीज के दो दो रुख नजर आ रहे हैं।
देखो ना, लियाकत अली खान को, लियाकत अली खान के कत्ल से पहले हमारे यहाँ, हमारी तारीख में एक और वाकया हुआ था और वो था रावलपिंडी साजिश केस। रावलपिंडी साजिश केस जिसके रूहे रवां जनरल अकबर थे। जब तकसीम हुई है तो मुसलमान अफसरों में सबसे सीनियर जनरल अकबर थे। अकबर खान का कलीदी किरदार था, उसमें हमारे कुछ दानिश्वर भी शामिल थे। वो उस साजिश को बेनकाब करने वाला, मैंने जो हवाले देखे हैं वो अय्यूब खान था। लियाकत अली खान को उस साजिश की इत्तला देने वाला अय्यूब खान था। तो अय्यूब खान को पाकिस्तान के अफवाज का कमांडर इन चीफ कायद मिल्लत लियाकत अली खान ने इसी वजह से लगाया था कि उनका ख्याल था कि अय्यूब उन अफसरों में सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। उसके बाद लियाकत अली खान से अमरीका ने मुतालबा किया था कि अमरीका को एक फौजी अड्डा दे दिया जाए शुमाली इलाके में। उन्होंने पेशावर के बाहर बेस मांगी थी जो बड़ाबेर है, बड़ाबेर के नाम से। लियाकत अली खान ने इनकार कर दिया था और कहा यह जाता है, बहुत से हवाले मैंने ऐसे देखे हैं कि उनके कत्ल की साजिश अमरीका के ईमा पर तैयार की गई थी कि लियाकत अमरीके मंसूबे की राह में रुकावट थे, लिहाजा उनको उस कांटे को निकालना जरूरी था। अय्यूब खान ने इख्तदार संभालने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि बड़ा बेर अमरीकियों के हवाले कर दिया। तुम्हें याद होगा, 2 मई, मुझे तो तारीख भी याद है, 2 मई 1960 को उस वक्त के सोवियत यूनियन के इलाके पर गिराया गया था, रूस ने गिराया था एक अमरीकी स्पाई प्लेन U-2 नाम का, जिसको कमांडर गैरी पावर, जिसके पायलट थे वो उनको कैद कर लिया गया था। और उसके बाद, उसके दूसरे दिन मॉस्को में, क्रेमलिन में एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया था जहां उस वक्त के रूसी रहनुमा निकिता ख्रुश्चौफ ने हमारे सफीर आगा हिलाली साहब को, मरहूम हो चुके हैं वो, उनके बेटा जफर हिलाली मेरा फॉरेन सर्विस का बैचमेट है, अक्सर टेलीविजन पर बहुत प्रोग्राम करता है वह पाकिस्तान में, आगा हिलाली साहब को भरे मजमे में इस्तकबालिया में ख्रुश्चौफ ने धमकी दी थी कि अपनी हुकूमत को बता दो कि अगर आइंदा पेशावर की बेस से कोई अमरीकी स्पाई प्लेन उड़ा और हमने उसे गिरा लिया तो पेशावर दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। आगा हिलाली साहब, मैं जब पहली अपनी सिफारती तकर्री पे न्यूयॉर्क आया हूं 1968 में, तो आगा हिलाली वॉशिंगटन में हमारे सफीर थे। میں نے آغا ہلالی صاحب سے پہلی ملاقات میں پوچھا تھا کہ سر یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے کہا منو ان سچ ہے. میں دہل کے رہ گیا تھا, آغا ہلالی کے الفاظ تھے کہ میں دہل کے رہ گیا تھا. اور میں نے واپس دفتر پہنچ کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک سائفر ٹیلیگرام کے ذریعے سے خروشچوف کی دھمکی حکومت پاکستان کو بھجوا دی. تو یہ پس منظر ہے لیاقت علی خان کے کو راستے سے ہٹانے کا. دوسری بات یہ, تم کہہ رہی ہو کہ بنگلہ دیش 1970 کے انتخابات کے بعد ایک تو فوجی حکمران تھے یحیٰ خان, دوسرے دو سیاستدانوں کی انائیں تھیں. دو ہی سیاستدان کہا تھا نا, نہیں, جو خارج ہوئی اور جو مشرقی پاکستان کے سانحے پر منتج ہوئی وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کی انا تھی. مجیب الرحمان کی اگر انا کہتی ہو تو مجیب الرحمان تو منتخب کیا تھا, اکثریتی ووٹ نے منتخب کیا تھا, وہ حقدار تھا کہ ملک کا وزیر اعظم بنے, اس کو کیوں وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا؟ اور یہ کہنا کہ ہندوستان نے, ظاہر ہے کہ وہ تو ہندوستان کے بے شمار مورخوں نے کہا ہے, سیاستدانوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مکتی باہینی کی مدد کی, مکتی باہینی کی تربیت ہندوستان میں ہوئی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے گھر کا دروازہ اگر کھلا چھوڑو گی رات کو تو چور تو وہ خود آئے گا.
بہت شکریہ. آپ نے سر کہا کہ چلیے آپ دو سیاستدان نہیں تو ایک ہی سیاستدان سمجھ لیں, مگر الٹیمیٹلی دس از اے پولیٹیشین.
اور وہ سیاستدان بھی کسی پیداوار تھا بھائی, بھٹو کو بنانے لانے والا کون؟
ایوب خان
تھا.
ٹھیک ہے, اچھا
تو وہ جو کہا جاتا ہے نا,
یہ بیل شروع سے ہی یہ گڑبڑ ہو گئی تھی. وہ کہتے ہیں جس عمارت کی بنیادیں ہی ٹیڑھی ہوں گی تو عمارت تو ٹیڑھی کھڑی ہوگی.
اول دن سے پاکستان کو لیاقت علی خان کے بعد سے پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ قرار دے دیا گیا. یہ نعرہ لگایا گیا
قتل کے بعد کی بات کرتے ہیں, میں یہ کہتی ہوں ہی واز دا رائٹ ہینڈ. اگر میرا کوئی رائٹ ہینڈ ہے اور اگر اس کو لگتا ہے ایوب خان بڑے سنسیئر ہیں اور وہ آرمی سے بھی ہیں, تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ قائد اعظم دا فاؤنڈر آف پاکستان کے پاس آتے اور ان کو کہتے کہ جی ہاں جی اس نے مجھے ان کو کنونس تو کرتے. قائد اعظم قائد اعظم واز سرپرائز بین لیاقت علی خان. میرے پاس ویڈیو ہے جب لیاقت علی خان قائد اعظم سے ملنے جاتے ہیں, ایوب خان ان کے ساتھ تھے, تو قائد اعظم واز ڈسٹربڈ بائی دس. ٹھیک ہے, اینی ویز
ایوب خان کمانڈر ان چیف نہیں ہوا.
نہیں, تب تک ان کو وہ ڈھاکہ بھجوانے کا ہو چکا تھا, ڈھاکہ بھجوانے کا ہو گیا تھا.
پہنچنے پر جب ایوب خان نے قائد اعظم کا استقبال کیا,
پرانی کہانی کو چھوڑیے, آج کی ہم بات کرتے ہیں. آج بھی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنی اپنے طور پہ, حالانکہ دشمن سے, آج کی اگر تاریخ دیکھیں دنیا کا دا فرسٹ کنٹری از امریکہ, سیکنڈ ان ہر سچویشن میں از چائنا, اینڈ اس کے پیچھے کھڑا ہے انڈیا, اور دا فورتھ نمبر از رشیا. انڈیا اور چائنا کا اینٹ کتے کا بیر ہے, مگر اگر آپ ایکسپورٹس کی بات کر لیں تو جتنا کاروبار چائنا کے ساتھ اس وقت انڈیا نے کیا کسی اور ملک نے اتنا نہیں کیا. ہم ہر چیز کو ایک جگہ پہ نہیں لے کے آ سکتے. پاکستان میں ہمارے پولیٹیشنز کو چاہیے ڈپلومیٹک, آپ سفارتکار رہے ہیں, جب دو سفارتکار ملتے ہیں تو یہ نہیں کہ انڈیا کا سفارتکار نظر آئے گا تو آپ کنی کترا کے وہاں سے نکل جائیں گے, آپ ڈپلومیٹکلی ڈیل کریں گے, ملیں گے.
بالکل
اس وقت پولیٹیشنز کو چاہیے کہ اگر پاکستان کی اکنامک صورتحال اتنی بری جا رہی ہے, یعنی اٹس ڈکلائن, ایبسولوٹ ڈکلائن پہ ہے, تو آل دا پولیٹیکل پارٹیز مسٹ سٹ ڈاؤن ٹوگیدر رادر دین کہ فارم 45-47 پہ پروو بھی ہو گیا, الیکشن کے ریزلٹس بھی آ گئے, آپ کو پتا بھی ہے کتنے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, آپ آج بھی آدھی سے زیادہ جنتا کو آپ دہشت گرد قرار جو لوگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک پولیٹیکل پارٹی ملی بھی ہے نا, پیپلز پارٹی نے تو انکار کر دیا تھا, پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا اس میں استحکام.
جو پولیٹیکل پارٹی ملی ہوئی ہے فوج کے ساتھ, جرنیلوں کے ساتھ, اس کو لانے والے کون ہیں؟
سر میرا خیال ہے ہم ایک ہی بات کو دو الگ طریقوں سے کر رہے ہیں.
نہیں 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 تم
فوج کو تو اپنا مقصد چاہیے. فوج نہیں, ان جو پاور ہنگری جرنیل ہے اس کو اپنا مقصد چاہیے, جس نے ساری کی ساری فوج کو, میری پوری فوج کو ڈیفیم نہیں کرے, چند پاور ہنگری جرنیل, اس نے اپنی کابینہ بنائی ہوئی اپنے ارد گرد, وہ ٹولہ جنریٹ کیا ہوا ہے,
ٹولہ ہے جو پاکستان کی افواج پر قابض ہو گیا ہے.
اچھا اچھا, تو پیپلز پارٹی کے دیے ہمیں کانفیڈنس میں نہیں رکھا, ان کو چاہیے کہ یہ لوگ پولیٹیکلی اکٹھے ہوں. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ عام آدمی, آپ کینیڈا میں دیکھیں کتنی کرپشن بڑھ گئی پاکستانیوں کی وجہ سے, انڈین کی وجہ سے بھی بڑی. میں
وہ تو وہ جو امیگرنٹس ہیں وہ اپنے
سیم ہے پاکستان میں, عوام بھی بری اور
ساری برائیاں اپنے سامان سفر میں
سارا بیگیج ساتھ لے کے آئے,
وہ تو لے آتے ہیں. سوال پاکستان کا سوال یہ ہے کہ آج دیکھو, آج کراچی اسٹاک ایکسچینج میں 1500 پوائنٹ کی تنزلی ہوئی ہے.
کس کو پرواہ ہے,
لیڈر کو؟ یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو رونا ہے بیوی, کہ وہ جو جرنیلی ٹولہ ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے.
آپ صرف جرنیلی کو دعوت کہتے ہیں, میں یہ میں عام آدمی کو, میں آپ کی معذرت کے ساتھ سر, میں آپ
نہیں نہیں عام آدمی بھی, عام آدمی بھی اس کا ذمہ دار ہے, اس لیے کہ پاکستانی قوم میں بیداری کی جو لہر دوڑنی چاہیے.
سر آج کی پریس کانفرنس کو آپ کور کریں, کیا کہا انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے, اور بےچارے اپنی تعریف ہی کرتے جانے, مطلب جو میں یہ سمجھ گئی ہوں کہ ہاں جی آپ ووٹ دیں کہ کیسی ہے, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, تو مطلب کیا آج وہ, میرا نہیں خیال کہ فوج کو اتنا فرنٹ پہ آنا چاہیے,
بالکل نہیں آنا چاہیے, لیکن یہی تو المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ فوج ہر ریاست کے ہر معاملے میں دخیل ہے, گھسی ہوئی ہے, جو نہیں ہونا چاہیے. تم ایک جمہوری ملک میں رہتی ہو, تم نے یہاں کبھی میں تو نہیں جانتا, میں اپنی جہالت کا اقرار کر رہا ہوں کہ میں تو نہیں جانتا کہ ہمارے فوج کا سربراہ کون ہے.
نہیں سر ہم جانتے نہیں, مگر امریکہ میں بھی جو پینٹاگون ہے ہیز آل دا ڈیسائیڈ. اینی ویز میں آپ سے جو اس وقت ایک پوچھنا جا رہی ہوں,
آج
کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں پولیٹیشنز, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس فوج اتنا انٹروین کرتی ہے تو وہ اس کو جو پوزیشنز اور عہدے ملے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟
یہ تو تم اس سیاسی کلچر کی بات کر رہی ہو,
کرپٹ ہے نا,
جو اس سیاسی کلچر کی بات کر رہی ہو جس میں اخلاقیات کو اب سر فہرست رکھا جاتا ہے. ہمارے یہ سیاستداں, میں کہتا ہوں وہ اصطلاح تو بہت معیوب لگتی ہے, لیکن اٹھائی گیرے ہیں, یہ اٹھائی گیرے ہیں جو اقتدار کے بھوکے ہیں, اور ان کو اقتدار جو بھی سونپے یہ اس کو آمنا و صدقنا کہہ کے قبول کر لیتے ہیں.
سیڈ ہے سر, اور اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے, میں نے آپ کے ساتھ سناریو شیئر کیا کہ آپ کی جو رولنگ پارٹی ہے وہ دہشت گرد فارم 45-47 کے حوالے سے دیکھ لیں, کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں,
وہ تو تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتے ہیں.
اگزیکٹلی, عزم استحکام, تو اگر آپ توپیں تانیں گے تو اپنے پاکستانیوں کو کتنا ماریں گے. آج سر ایک آپ سے میں ٹیکنیکل بات پوچھنا چاہتی ہوں, آئی پی پیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, یہ کس دور میں کانٹریکٹ دیا گیا تھا بجلی پیدا کرنے کے, جو ٹھیکے تھے کس دور میں دیے گئے تھے؟ آج آپٹما آل پاکستان جو ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن ہے, ان کا ایک بیان آیا, انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر گورنمنٹ کو آئی پی پیز کا جو کانٹریکٹ ہے وہ منسوخ کرنا چاہیے, تو ڈیفالٹر نہیں ہو جائیں گے؟
سوال یہ ہے عارفہ کہ یہ آئی پی پیز ہیں کس کی بھائی, کوئی 86-88 آئی پی پیز ہیں, جن میں سے 60 زرداری اور شریف خاندان کی ہیں, 60 آئی پی پیز, 10 فوج کی ہیں, اور 8 کے قریب شاید وہ 10 वो मुत्तहिदा अरब अमारात की हैं और 8 चीनियों की हैं, 88 कुल तादाद है। तो सवाल यह है कि तीन चौथाई तो मालिकान दो खानदान हैं। अब वो खानदान इस वक्त बफैज़े फौज मुल्क पर हुक्मरानी भी कर रहे हैं, तो कौन इन आईपीपीस के मसले को छेड़ेगा, कौन उनसे ये कहेगा इन आईपीपीस से कि इस पर नजर सानी होनी चाहिए। ये सवाल के हुकूमत आईपीपीस के पर नजर सानी करे, ये तो ऐसा ही है कि चोर से कहे कि वो अपने मुकदमे पर फैसला करे।
बिल्कुल सही साहब, खबर आज ये है कि कामरान अरशद जो कि चेयर हैं ऑप्टिमा के, उन्होंने कहा हुकूमत चाहती है कि लाखों लोग
उन्होंने मुतालबा किया है कि आईपीपीस पर के साथ जो माहदे हैं नजर सानी होने चाहिए। माहदे क्या है, ये तो खुली हुई लूटमार है। माहदा ये है कि वो जितनी बिजली पैदा करेंगे उस
नजर सानी नहीं, उन्होंने कहा है कि
मनसूख किया जाए, बिल्कुल मनसूख होने चाहिए। इसलिए कि ये माहदे तो मुझे लगता है कि ऐसी धांधली है, ऐसी लूटमार है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। आईपीपी जितनी भी बिजली पैदा करते हैं उसकी तमाम तर रकम उनको अदा कर दी जाती है। मैंने अभी कल ही पढ़ा था कि वो 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं लेकिन मुल्क में खपत सिर्फ 22,000 मेगावाट की है। 23,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही लेकिन उसकी पूरी अदायगी आईपीपीस को की जा रही है और की जा रही है डॉलर में। और डॉलर में भी आमिर मियां वो रेट जो उस वक्त था, जो रुपए और डॉलर का जो शरह मुबादला थी उस वक्त जब 1996 में शायद बेनजीर की हुकूमत थी जब ये आईपीपी के साथ माहदे हुए हैं, तो उस वक्त जो डॉलर
कैपेसिटी में ये है कि ये मनसूख कर सकेंगे, इनको फिर फाइन्स या पेनल्टीज या डैमेजेस भी तो पे करने पड़े।
सवाल ये कि वही उन लोगों से मनसूख करने के लिए कहा जा रहा है जो खुद इससे फायदा उठा रहे हैं, वो तो अपना घर भर रहे हैं। उनको तो वो जो कहावत है ना कि हल्दी लगी ना फिटकरी और रंग चोखा आया, तो उनका तो कुछ नहीं जा रहा। वो तो जितनी बिजली पैदा हो रही है उसके तमाम तर रकम हुकूमत पाकिस्तान से वसूल कर रहे हैं, तो वही लोग हुक्मरान हैं, वही इक्तदार मसनद इक्तदार पे बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि वो क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाएंगे।
बहुत शुक्रिया, बड़ा ही गुंजलदार केस है, बड़ा ही गुंजलदार केस। तमाम दुनिया में प्रॉब्लम्स है। अभी मेरे नजर से गुजरी कि सैकड़ों तारकीन वतन का एक काफिला अमेरिका की तरफ रवाना है। ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो भी तारकीन वतन को लेना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इमिग्रेशन के अगेंस्ट है। आप भी फ्रांस में आपने इसके दंगे फसाद सुने हैं। वेयरएज हमारे अपने मुसलमान ममालिक जो हैं, आज बांग्लादेश का बड़ा तस्करा करते थे और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद पर इतना अरसा वो हुक्मरान रही हैं और उन्होंने मुक्ति बहानी की जो वो था उसको सपोर्ट किया था, 30% कोटा आपने कहा दिया, मगर यूथ ने फौज को और कर्फ्यू लगा, मार्शल लॉ एक किस्म का आया, घुटने टेकने पे मजबूर,
कर्फ्यू लगा। कौम बेदार है, कौम में हिस है अपने मफादात के, अपने हुकूक का तहफ्फुज करने का।
अच्छा, इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि हम बिक जाते हैं जब हम जनरल ये जो जिसने उसामा बिन लादेन को पकड़ाया था वो यहाँ पे अमेरिका में बैठे हुए हैं। जब हम उनका मनसब उनका पैसा देखते हैं तो हम बिक जाते हैं, हमारा मॉरल फाइबर है ही नहीं।
भाई अजमल कासी को गिरफ्तार करने वाला कौन थे, वो फारूक लगारी जो मुल्क के सदर रहे हैं, उनके इलाके में अजमल काशी को गिरफ्तार किया गया था। उसके
दौर था नवाज शरीफ साहब का,
नवाज शरीफ का दौर था, लेकिन उसके सर पर जो $10 मिलियन के का इनाम रखा हुआ था वो इनाम फारूक लगारी ने वसूल किया। तो ये तो आवे का आवाई टेढ़ा है, बेहसी क्यों है? सवाल कभी तुमने खुद से किया है कि बेहसी क्यों है? उसका जवाब
बताइए।
उसका जवाब ये है कि हम पर जागीरदारी कल्चर का तसल्लुत है। जागीरदारी में आवाम की कोई आवाज नहीं होती, उनको इतना कुचला गया है। ये तो ये हमारी बदनसीबी है कि ये चारों सूबे, इनमें वो निजाम राइज था जिसमें इंसान की कोई वक्त नहीं है, कोई हुरमत नहीं है, और हमारा दीन किन सुतूनों पर खड़ा हुआ है? दो सुतूनों पर मैं कहता हूं, एक इंसानियत का एहतराम, दूसरा अदल व इंसाफ। और हमारे यहां दोनों ही सुतून का वजूद तक नहीं है।
बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान में लाकानूनियत की इंतहा है कि आपको बताइए कि वो जो मुख्तस सीटें थी उनके पेपर्स का सबमिट करने का दिन था, और इस्लामाबाद पुलिस के वहां पर छापा। अगेन आपके पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, मैं बार बार कहती हूं, एंड पावर हंग्री जर्नल्स जिन्होंने अपने इर्द गिर्द अपनी काबीना बनाई हुई है। आज आप हालत देख लें, बतेरे आर्मी के ऑफिसर्स जिनके बच्चे भी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, एंड ये बुरे वक्त देखने के लिए सभी तैयार हैं। बहुत शुक्रिया जनाब।
अब हो क्या रहा है? देखो ना, मुस्तकबिल तो तारीख नजर आता है। मैं ये समझता हूँ कि
वो क्या है, अल्लाह की आयत है, ला तक न तू, कि अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह की रहमत से मायूस।
लेकिन आमाल भी तो होने चाहिए ऐसे जिसमें अल्लाह की रहमत आए। भाई अगर तुम मुस्तकिल जराइम करते जाओगे, अगर तुम मुस्तकिल अल्लाह, देखो अल्लाह ये कह रहा है अपनी किताब में, सूरह मुदस्सिर में वो कहता है, नहीं सूरह फतह में, कि अल्लाह के कानून में कभी कोई तब्दीली नहीं हो पाओगे। अल्लाह के कवानीन नहीं बदलते ये, और उन कवानीन में ये है कि खुदा ने आज तक उस कौम की किस्मत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपने
हालत
बदलने का। देखो ना, वो मुझे याद है कल रात को मैं एक अखबार के लिए कॉलम लिख रहा था, तो मैंने कहा कि मैं बच्चा था जब पाकिस्तान की तकसीम हुई है आमिर मियां, उस जमाने में एक शेर जो नारे के तौर पे इस्तेमाल होता था वो ये था कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।
तो
आज ये शेर पाकिस्तानी पर खूब बहू लाहक होता है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।
ये दास्तान भी रहेगी इंशाल्लाह ताला। आप देखिए
अल्लाह से दुआ यही फरमाए,
मगर जो गलत है वो गलत है। साहब इनका पीटीआई का डिजिटल मीडिया जो है उसको भी उन्होंने का डिस इन्फॉर्मेशन सेंटर बना हुआ था, कंप्यूटर देखे गए। मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपसे बताती हूँ, रऊफ हसन साहब इज अ वंडरफुल मैन, द मैन डज नॉट से एनीथिंग रॉन्ग, ही इज अ मैन ऑफ वैल्यूज। मैं जाती तौर पर आपको ये बात कहती हूँ, कभी आज तक उन्होंने गलत बात या गलत बयानी से काम नहीं दिया या मुल्क की सालमियत के अगेंस्ट बात नहीं। ही राइट्स वेरी नाइस, उनके आर्टिकल्स द न्यूज में आते हैं, मगर ये अगर इस्लामाबाद की पुलिस ने अगर अरेस्ट किया है तो ये इसमें जाहिर आर्मी का इमा, आर्मी की दस्ते शफकत जरूर इन निगरान लीडर्स के ऊपर है।
आरिफा पत्ता नहीं हिलता पाकिस्तान में जब तक GHQ से हुक्म ना आ जाए।
बहुत शुक्रिया सर। देखो मैं अपनी हम अपनी गुना छोड़ेंगे, वो कहते हैं वो अपनी गुना छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें?
तक वहां से हुक्म ना आ जाए तो ये तो अब वही बात है ना कि
अगर आपके पॉलिटिशियन भी करप्ट हैं सर, मान ले
मैं कब कहता हूँ पॉलिटिशियन करप्ट हैं।
अभी ये अगर पुलिस ने आके किया है और आपके ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे अजमे इस्तेहकाम फौज की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत है, दिस इज व्हाट दे नीडेड इट फॉर। वो ये कहते थे कि दहशतगर्दी और ये दहशतगर्द पाकिस्तान के अवाम को गर्दान रहे हैं एंड दिस विल रिजल्ट इन अ वेरी
नहीं। आज तो DGISPR ने जो कहा है तो उन्होंने तो PTI को कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा है कि ये डिजिटल टेररिज्म हो रहा है, नई इस्तलाह ईजाद की है उन्होंने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी माफिया कहा है, ठीक है ना
सर? भुगत लेंगे आप जरा वॉच कीजिए।
नहीं नहीं,
यू जस्ट वॉच
उन, वो भुगतेंगे तो सही, वो तो कानून फितरत है,
इंशाल्लाह
तो कुदरत का कानून।
बहुत सारी चीजें हमें अपने इख्तियार में नहीं लेनी चाहिए, अल्लाह का कानून सबसे बड़ा है।
हाँ,
इंशाल्लाह।
लेकिन जमीनी खुदा जो बने बैठे हैं ना, वो समझते हैं, देखो ये भी खुदा की लानत है, मैं इसको लानत कहता हूँ कि हर यजीद हर फिरौन ये समझता है कि उसके पेशरो का जो अंजाम हुआ वो उसका इसका अंजाम वो नहीं होगा, लेकिन कानून फितरत खुदा का कानून कभी नहीं बदलता।
बहुत शुक्रिया जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। एक सवाल आपके लिए भी आया हुआ है, अगले प्रोग्राम में मैं करूंगी आपका सवाल लेके आऊंगी इसके पास। मेरे लिए पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं जैसे जनाब रऊफ हसन साहब के बारे में मैं कहती हूँ, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ही इज अ थॉरो जेंटलमैन। बहुत बड़ी गलती है उन लोगों की जो इसको अरेस्ट कर रहे हैं, मगर 100 दिन चोर के एक दिन साथ का, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि क्या टोरंटो में रहते हुए बहुत से लोग 770 को कहते हैं PTI का चैनल है। यू नो वट, आई हैव नो कंट्रोल ऑन यू, यू कैन सी वट अवे यू वॉन्ट टू सी। आई हैव ओनली माई सिंपथी फॉर माई ओन कंट्री, आई हैव ओनली लव फॉर माई ओन कंट्री। ये मैं और आप गलत हैं, बिके हुए हम आप हैं। अगर आज भी जो लोग गलत कर रहे हैं, अगर फॉर्म 45-47 पे गलत फैसला हुआ है, तो फिर अगर आप इतने ऑनेस्ट हैं और अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो फिर क्यों गलत को गलत नहीं कहते? ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा है कि फॉर्म्स में हेरा फेरी हुई। आपके काकड़ साहब ने ये लफ्ज कह दिया एक आदमी से, जब उनकी मुंह मारी हुई तो उन्होंने कहा मैं फॉर्म 45-47 की हकीकत तुम्हारी बताऊं तो तुम जिस पोजीशन पे हो उस पर भी ना रहो। अभी दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। दिस इज अ रेडियो प्रोग्राम, हमने सवाल भी करने हैं, हमें जवाब भी चाहिए। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने तमाम मुअज्जज मेहमानों का जो यहां तशरीफ लाते हैं। हम सिर्फ सच की खोज में हैं। अभी दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर मेरा अल्लाह की जात, मगर मुझे और आपको अपना मुहासबा करना जरूर होगा। अभी दीजिए इजाजत, प्लीज स्टे ट्यून्ड।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो? घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है, फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वेराइटी है। बेहतरीन फीस्ट इंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पर। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकवेल एज वेल। विलेज टेस्ट, 9052323663। विलेज टेस्ट। कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा, 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो, 905-607-5000, 905-607-5000।
अजीत, सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ,
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659, लाइसेंस नंबर 10530।
बटाला सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, हलाल मीट ते सब्जियां नाले फल भी ताजा मिलदे, इत्थे मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिलदे, भल्ले पकौड़ियां ताजा मिठाइयां गर्म समोसे मिलदे, बटाला सुपर मार्केट।
स्कारपोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, 200 मार्कम रोड, स्कारबोरो, मार्कम रोड से इंग्लिंटन द संगम, फोन 416-264-3111।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडीज और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस, गारंटी ऑन लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन जीटीए। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ब्रैम्पटन सड़कां, फुटपाथां अते बस स्टॉप दे सर्दियां दे रख रखाव दे कॉन्ट्रैक्ट दा नवीकरण करन जा रहा है अते इह जानना चाहुंदा है कि शहर दे निवासी इन्हां सेवावां दा भुगतान करन लई तैयार हन। परिणाम स्वरूप निवासियां दे लई टैक्सेस वध सकदे ने पर सारियां परिवारां नूं इह सेवा दा लाभ नहीं मिल सकदा। सारे फुटपाथां नूं साफ करन लई सालाना $2.6 million दा खर्चा आउंदा है। ड्राइवे तो बर्फ साफ करन लई इस दी कीमत $19.6 million प्रति साल होवेगी। ते अपने सुझाव देण लई अज ही विजिट करो brampton.ca/engage।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यू थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी, क्विक ट्रक ल्यू 519-622-0660, quicktrucklube.com।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس، الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com، لوکل نمبر 6478724900।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773, ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
जी साहब, एक बार फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। आई हैव अ वंडरफुल मैन विद मी एंड दैट इज राजा बादशाह। राजा बादशाह वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन कनाडा, ऑल स्टेट के साथ ताल्लुक रखते हैं। आप ऑन्टेरियो में कहीं भी हैं, आप किसी इलाके में भी, ऑन्टेरियो इवन विंजर में, मगर आप प्रोग्राम सुनते हैं ٹورنٹو میں، مسیساگا میں، مالٹن میں، ملٹن میں، نیاگرا فالز میں، آپ ویسٹ کی طرف چلے جائیں، ایسٹ کی طرف چلے جائیں، جس سمت میں چلے جائیں، بیری میں سن رہے ہیں آپ پروگرام، مگر ٹورنٹو کی ایریا میں، آنٹیریو میں آپ آتے ہیں پروونس میں، تو یو جسٹ کال ہم 647-290-3773-290-3773. راجہ بادشاہ سے بات کریں، آل اسٹیٹ ایجیکس میں آپ کا آفس ہے، مگر اگر مس ورلڈ ورچوئل ہو سکتی ہے تو آپ ورچوئل گفتگو کر کے اپنی انشورنس کیوں نہیں لے سکتے؟ راجہ بادشاہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.